कम उपलब्धि होगी। कृष्ण प्रेम कितना दुर्लभ है इसके संत से पाया जा सकता है। सबको साधु संत की महिमा समझ में आएगी। हम लोग साधु संत की महिमा कुछ कुछ समझ रहे हैं कुछ को, इसलिए साधु संत खोलते चुके हैं। जब वो नहीं मिलता है साधारण लोगों में भी भक्ति का कुछ संचार कर अनुकूल बनाकर श्रोता के रूप में या जीव रूप में हम लोग कुछ हरी कथा करते हैं। ऐसा संत महाराज जी कह रहे थे प्रभुपाद के रूप में। लोग कहते हैं कि हमने बहुत शिष्य बनाए, हमने एक भी शिष्य नहीं बनाया। मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ हम एक परिवेश बना रहे हैं, परिवेश मैंने क्या वातावरण बना रहे हैं जिसमें कुछ हरी कथा की आलोचना हो। हम कहें तो वो लोग सुने, सुनने के वाले भी जगत में नहीं है, बहुत कम हैं, बिरले हैं। इसलिए कह रहा हूं मैं सेवक किसी को अपने शिष्य नहीं बनाता। मैं जानता हूं कि गुरु के योग्य नहीं, यही गुरु को समझना है। मध्यम अधिकारी वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि यथार्थ गुरु नारद जी हैं या उसके समकक्ष हैं सनातन जी के गुरु हैं। यह जगत हम लोग गुरु तो नहीं है किंतु वातावरण बनाने के लिए ऐसा किया है जिससे भक्ति की आलोचना हो सके, भक्ति की कथाएं सुन सकें। अन्य तो ये जो कथाएं हम कह रहे हैं ये कौन सी नगर संसार के लोग जो मान मंदिर की वेल खाते हैं जिनका कोई आचरण नहीं है, विचार नहीं है, सबको अवलंबन ही नहीं किया है, जिनको कुछ पता नहीं है भक्ति का, वो लोग सुनेंगे? वो लोग सुनेंगे। ये एक वातावरण है जिसमें कि हम लोग ये सबको करेंगे। इसे जो कुछ भी करेंगे साधु उसे अनुगत में करेंगे। यदि आप गोवर्धन दास करते हैं, यदि आप वृंदावन में बात करते हैं, आप 3 लाख हरिनाम करते हैं और साधु संघ नहीं है तो वो 0 हो जाएगा या कुछ फल देगा, प्रेम फल नहीं देगा। और साधु संघ में हम जहां रह रहे हैं कुछ साधु संघ इनके संग में रहें सभी कुछ वहीं पर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। साधु संघ जी शांति पर्वत पर रहते थे, याद यहाँ पर कि 4 वृक्ष थे, वट, पीपल, पापड़ और आम का, जिसमें रात में सोते थे किसी वृक्ष के नीचे ही आता है। हाँ, बरगद के नीचे हरी कथा होती और कीर्तन करते थे रसाल वृक्ष अर्थात आम वृक्ष का, और पापड़ के अंदर में या कुछ छाया में भी काम करते थे और ध्यान इत्यादि काम करते थे और कथा करते थे। कहाँ? सुमेरु पर्वत पर किया था। जयराम की ऐसी सुंदर कथा हो रही है और शंकर जी कैलाश पर्वत पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कैसा है? यही तो साधुओं के अंदर जहाँ भी रहें कृष्ण की कथाओं का रखे भी कथाओं का रखन साधु हो, उनके अनुगत में भजन हो, साधु हो। और यदि साधु संघ नहीं है, साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है, साधु सिद्धि मैंने प्रेम शक्ति सिद्धि हो जाएगी। और साधु संघ नहीं है और ये सब साधन ये पूर्व साधु कौन है? ये कृष्ण के तत्व को जानने वाला एकांतिक जो में कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। लाख वक्त आने पर भी प्रहलाद महाराज की भांति अटल अचल हिमालय की तरह में बने रहे, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, उनका मत बदल नहीं सकता। प्राण चले जाए वैष्णव कुल की रीति है, वैष्णव कुल की रीति ये क्या है? प्राण जाय बलु भक्ति न जाए। कृष्ण के घाट पर और राधा कुंड के घाट पर पानी पिएंगे भाई, ज्ञान के और मुक्ति वाले घाट पर नहीं पिएंगे। किसी को पता ही नहीं है जो मुक्ति का घाट कौन है, प्रेम का घाट कौन है, राधा जी का घाट कौन है, निराकार ब्रह्म का कौन सा घाट है, ये पता ही नहीं। सब जगह को एक समान मान, ये समझना जरूरी है, नहीं तो ये सब भागवत समझ में नहीं आएगा जो उसको बताया जा रहा है। तो गोपियां कैसे कर रहे हैं, उनका दैनिक चर्चा इसमें दिया है। शाम को सवेरे जब जाते हैं वन में और जब लौटते हैं, गोपियां किस प्रकार से कृषित नयनों के उन्हें निहारती हैं, कभी घर के अंदर कभी बाहर में आती हैं जाती हैं, और पश्चिम की सस्मित मुखम अपने मुस्कान भरी मुख से और नयनों से कृष्ण को निहारती है। और कृष्ण क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ये दैनिक चर्चा है, कैसे घर का काम करती हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, घर का काम नहीं किया, सबको उनके पास में दुख आते हैं, जगत के टकरा कर चले जाते हैं। भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में और साधन भक्ति में अंतर है। साधक भक्त को दुखाक्रांत कर लेते हैं, उसको ये अशांत कर देते हैं। भाव भक्त में दुख आते हैं किंतु दुख आते हैं उसको अभी दुख नहीं करते, और प्रेमा भक्ति वाले को दुख ही
अभी
मतलब अधिकारी उसका सामंजस्य कर लेगा और दुख को दुख नहीं करना चाहिए, दुख तो उसको समान नहीं। और साधक में भी बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं, उनको ये कला मालूम नहीं है कि संसारिक बातों को, दुखों को, कष्टों को कैसे हम सामने ले सकते। जब ये कला आने लगती है तो वो मध्यम अधिकार में प्रवेश करता है, नहीं सको परिचय भी कहते हैं। वो भी है गोपियों के बारे में करते चारों मूर्ति के युद्ध में चारों मूर्ति मारे गए, उनके जितने कंस के भाई थे वो सब लोग आए और मारो मारो पकड़ो पकड़ो सब सत्य शिक्ष पर एक साथ में आक्रमण किया। और बलदेव जी ने वही हाथी का दांत और कृष्ण ने हाथी का दांत लेकर उनके समस्त भाइयों को और जितने पहलवान जो और जो आए थे चारू मूर्ति के बदले में अभी क्या 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 अभी बल प्रबल और यह सब को मार गिराया और बाकी जो है तो भरे। इसके बाद में कृष्ण ने कंस का यह सब लेकर के ध्रुव घाट पर दुर्गा सब संस्कार जैसा करना चाहिए संस्कार किया और विश्राम घाट में आकर उन्होंने स्नान किए सब लोगों के साथ में और व्रताश्रम टीका पर
दूर किया।
ये कौन महीने में हुआ था,
कार्तिक
महीने में फर्स्ट खंड आ रहा था, इसलिए ऊंचे किले पर चढ़ गए जो सूर्य वहां पर उनको साथ मिले और सम को गप किया आकर दूर किया और उसके बाद में उतर करके आए। महाराज उग्रसेन हाल में अभिषेक का समस्त सामग्री लेकर के आए। कोई भी राजा से मरने के बाद में कोई भी संप्रदाय किसी गुरु के अप्रकट होने पर वो जगह खाली नहीं रहती, उसी दिन उसी क्षण में उसको पूरा करना होता है, 24 घंटे के या 8 घंटे के अंदर उसको पूरा करना होता है। बिना राजा का राज्य नहीं रहेगा और संप्रदाय भी बिना गुरु के नहीं रहेगी, इसलिए वैष्णव में आचार्य के दर्शन होने पर साथ ही साथ में उनका घर में समाधि या जल समाधि या कुछ किया और करने के बाद में आचार्य को एक उनके बदले में अभिषेक कर दिया। यदि पूर्ण रूप से अभिषेक नहीं हुआ भी तो काम चलाओ प्रतिनिधि काम चलाओ आचार्य या काम चलाओ राजा या काम चलाओ प्रधानमंत्री ये जरूर करना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो संप्रदाय भी भ्रष्ट हो जाएगा। इन्हें साथ ही साथ में कर लिया। इसलिए कुरुक्षेत्र में देखा कि परस मारा गया मेरा बेटा, इतने सोने के थाल में चमर व्यंजन चमर इत्यादि लेकर के और अभिषेक की सारी सामग्री लेकर के मंत्रियों के साथ में ब्राह्मणों के साथ में कृष्ण के निकट पहुंचकर तो उसका अभिषेक करना चाहा। कृष्ण ने साथ ही साथ उनसे वो ले ली और लेकर के ब्राह्मणों के जय घोष में और मंत्रियों को से समझा करके और स्वयं राज तिलक अपने हाथों से अभिषेक होता नहीं आपके रहते पुरुषों के रहते हुए मैं कभी मिला जाऊंगी। और दूसरी बात उनको अभिशाप था, अभिशाप नहीं बल्कि वरदान, लेकिन उनका कोई भी वंश में कोई राजा नहीं होगा क्योंकि कृष्ण, इसलिए कृष्ण स्वयं उनके वंश में आए हैं उनकी भक्ति देख करके द्रवित होकर के। अरे जो समस्त विश्व ब्रह्मांड के ही यहाँ तक कि चीज जगत के भी समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, ये ब्रह्मांड की तो बात क्या, चीज जगत के ही मूल स्वामी हैं, सर्वकार कारण है, उनको इस जगत का संस्कार राज्य लेना उनकी भी बात है। इसलिए उनको भी लाभ कर दिया, इसे सभी काम निर्वाह हो गया। उन्होंने कहा बलदेव जी की, बलदेव जी हैं और हम हैं, सारे विश्व के राजा लोग आपके चरणों में उद्धव को बाहर लेकर के प्रणाम करेंगे, जो नहीं करा वो चाहे हम अपना करके उनको हम पकड़ लाएंगे और आपके चरणों में जुटा देंगे। आप निश्चिंत रूप से कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा करने के पश्चात घर में बड़े प्रसन्न से लौटे देवी जी और वसुदेव जी हाथ जोड़कर के खड़े हो गए। वही चतुर्थ गुरु, वही सैन भगवान, ये नारायण स्वरूप है, इनको इन्होंने हमको बल दिया था कि पुत्र के रूप में नहीं आऊंगा, हमारे काम का दूसरा कोई नहीं है। इसलिए यह स्मरण करके और हाथ जोड़ करके सौ स्थिति कर उसने देखा कि तुम्हारी लीला सब गड़बड़ हो जाए, जो माया को इशारा किया और इशारा करके अवसाय जैसी जी की गोदी में बैठ गए और उधर में बल देव जी तरुण देव जी के चरणों में गिर गए। पिताजी और ये कहते भैया एक सेकंड संदर्भ में जो माया के कारण होकर तो वो सब भूल गए और ये दोनों रोने लगे। ये बेटा तुमको मैंने बचपन से ही तुमको वहां पर दे दिया, जो तुमने तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर प्रसन्न होकर के फिर राजसभा में आए। तो नंद बाबा बैठे हैं अभी कहाँ बैठे हैं, जहाँ पर की महाविद्या जी का स्थान है, मथुरा पैलेस घर में थी संस्कार कारागार जी नरेंद्र धरी सारी कोई की और जमुना जी वैसे बैठी थी। नंद बाबा अपने थकड़े को लेकर के और सखाओं को लेकर के सिदान सुगर मधुमंगल इत्यादि को लेकर के वहीं पर खड़े हुए। शाम हो गई, कृष्ण और बलदेव जी वहीं पर पहुंचे। देखा नंद बाबा बड़े दुखी, आंखों में आंसू छल गया और कृष्ण को देखते ही आंसू कृष्ण बलदेव जी लेकर के एक दाहिने गोदी में एक बाएं गोदी में बैठे। बलदेव जी दाहिनी गोदी में और कृष्ण जी बाएं गोदी में, क्योंकि बलदेव जी बड़े हैं। कृष्ण जी रोने लगे, बलदेव जी भी रोने लगे, ये भी रोने लगे। बलदेव जी ने कहा बेटा आज याद आई, आज याद आई, आज याद आई, तीन दिन हो गए मैं भूखा प्यासा यहाँ पर बैठा, हमारा मित्र वसुदेव, हमारा भैया वसुदेव ये भूखे हैं। देवकी भी गई, सारे लोग भूल गए, अब तुम दोनों भाई भी भूल गए। एक बार तो मैं हमें देखने के लिए नहीं आया, नंद जी ने पानी पिया कि नहीं, बाबा ने पानी पिया कि नहीं, अब तुम घर में रह गए, क्या तुम लोगों की, तुम लोगों का विचार क्या है? क्या तो तुम्हारे बड़े प्रभु हैं, किंतु बदलाव तुम लोगों की इच्छा क्या है? मेरे साथ में चलेगा या यहीं रहेगा? कृष्ण ने कहा, पिताजी यहाँ के जितने सारे लोग हैं, देवी वसुदेव जी और सारे लोग, तो हमको कहते हैं कि तुम हमारा पुत्र है। हम मथुरा के उद्धव और प्रभु और महाराज उग्र थे, और यहाँ की सारी प्रजाएं और गर्गाचार्य इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, वो कहते हैं तुम बस देव जी के लड़के हो, देवती के लड़के। मेरा मन ऐसा स्वीकार नहीं करता, किंतु ये सभी कहते हैं, और इसलिए जबरदस्ती रोक रखा, हमें आने नहीं दिया, इसलिए आने में देरी हो गई। इतना सुनते ही नंद बाबा और जोर से रोने लगते। बलदेव जी ने कहा, देखिए पिताजी, मैं बस देव जी को अपना पिता नहीं हूं, हमारे पिता आप ही हैं। बचपन से जब से हमने देखा आप ही को देखा। यदि दर्गाचार्य ऐसा कहते हैं, मथुरा वाले कहते हैं, वसुदेव और देवकी जी भी यदि कहते हैं कि तुम हमारा पुत्र हो, मैं इसे मान नहीं, क्यों नहीं मान सकता? पिता बहुत तरह के होते हैं, जन्मदाता पिता, शिक्षा पालन पोषण करने वाला, शिक्षा देने वाला, राजा, ये सभी पिता, स्त्री का पति, स्त्री का पिता, प्राणों की रक्षा करने वाला वही पिता, और जिसने अपनी लड़की की शादी जो करता है वही पिता के पिता। इसलिए आपने हमारा पालन पोषण किया, यदि इनका पुत्र भी लोग आते हों तो उन्होंने तो त्याग कर दिया हमारा बचपन से ही, जो खुद ही असमर्थ है, जो हमारी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, प्राण नहीं कर सकता है, तो वो पिता क्या कर सकता है? इसलिए आप ही ने हमारा पालन पोषण कर दिया है। आप मैं आपको छोड़ करके मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नंद बाबा ने कहा, देखो बेटा ऐसा मत करो, कृष्ण को तो मेरे साथ में लेकर के जाता हूँ, तुम्हारा बेटा है, तुम उनके बेटे हो, किंतु तुमको किंतु तुम यहाँ कुछ दिन रहो, आज यदि नहीं रहेगा तो ये तो मारे जाएंगे, क्योंकि उनके छह बेटे मारे गए हैं, कंस ने मारा, और तुम उनके सातवां पुत्र हो, सातवां माने तुम ही उनके पुत्र हो, कोई पुत्र उनका बचा नहीं, जब भी तुम यहाँ नहीं रहेगा तो मारे जाएंगे। इसलिए बेटा तुम्हें कर रहा हूँ, कृष्ण के साथ में आके भी तुम को बचा, लेकिन मैं कृष्ण के यहाँ तुम आ जाना नहीं जाना, हमसे नहीं जाना। मैंने पिताजी ऐसा आदेश आप मत दीजिए, कृष्ण को छोड़कर के मैं एक सेकंड भी बच नहीं सकता, नहीं रह सकता, ऐसा आदेश। नंद बाबा ने कृष्ण की तरफ में देखा, क्या करना चाहिए? उनको तो याद है ना, इंद्र पूजा के समय में अच्छी सलाह दी थी ना, ये इंद्र का पूजा किस लिए करते हैं, गिरिराज जी का पूजा कीजिए। उन्होंने इसी बात सुना, और जब जब कोई बात हुई सबने को बुला लिया, ये कौन क्या करता है?
इंद्र पूजा की बात याद है, जब जब कुछ या बात होती है तो बुला लेते हैं नंद बाबा,
उनसे पूछते हैं, परामर्श करते हैं, बिना कृष्ण से परामर्श किए हुए छोटा सा बच्चा होने पर भी 10-12 वर्ष का कुछ कुछ नहीं करते, जो कुछ होता है कृष्ण से परामर्श अच्छा हुआ, क्योंकि गोवर्धन को भर्म करते हुए देखा, काली भद में टूटते हुए देखा, और सबसे बड़ी बात देखी ये कृष्ण जबकि नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए, तो कृष्ण वहां पर पहुंचे और देखा वरुण जी उपहार लेकर के कृष्ण की परिक्रमा करके इसका स्तुति कर रहे हैं, और उनके नाते हमारी भी पूजा करने लगे। उनका इतना प्रभाव, हमारे बेटे का प्रभाव बुद्धिमान जरूर है। एक दिन उन्होंने देखा काली हरद के किनारे, जिस दिन काली का दहन किया, रात में वही पास में अभी जिसका नाम है दावानल कुंड, वहीं पर सब ब्रजवासी लोग सो गए। इसलिए कहीं ये डर था घर में जाएंगे वहां पर आग न लगा दे या कुछ न कर दे, इसलिए डर के मारे चुपचाप किसी से कहे बिना उसी जंगल में रह गए। और कंस ने उसमें आग लगा दी चारों तरफ। कृष्ण ने सबके सामने देखते देखते उस आग को ऐसे काम कर दिया। साधारण बालक नहीं है, क्योंकि नारायण का इसमें कभी कभी आवेश होता है। ये नारायण भगवान नहीं है, किंतु इसमें न जाने क्यों नारायण का आवेश है, इसलिए अलौकिक कार्यों को करता है। इसलिए इसका परामर्श लेना कृष्ण की तरफ में देना कृष्ण ने कहा, पिताजी एक बात मैं बताऊं? बताओ बेटा। यदि मैं कहता हूं ऐसा किया जाए तो इसमें क्या हानि या लाभ है, इसको विचार किया जाए। बल मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी बिना बलदेव जी के मैं नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। अतः यह संभव नहीं है कि मैं आपके साथ चलूं और बलदेव यहां पर रहे। यदि हम दोनों भाई जाते हैं तो जैसे भी हो बलदेव जी का आपके भैया या मित्र हैं, बलदेव जी को कोई लड़का इत्यादि नहीं, इसलिए ये तुम्हारे जाएंगे। तो आप तो इतने मनस्वी और उपकारी हैं बिना किसी लाभ के हानि के, आप सबका कल्याण करना। इसे यदि आप आदेश दे दें तो मैं दो चार दिन यहां और ठहर जाऊं, बलदेव जी का भी मन लग जाएगा और साथ साथ में यहाँ के लोगों को भी सांत्वना मिल जाएगी, और दो चार दिन के बाद में हम परसों लौट आए, इसमें क्या करेंगे। उनका सब एकदम हृदय धड़कने लग गया, किंतु कृष्ण ने कुछ योग माया का अवलंबन दिया। कृष्ण ने मौन रहे वो नंद जी, कृष्ण ने अवसर देकर के सोने के आभूषण और रेशमी वस्त्र इत्यादि ये सब चीजों को लेकर के कहा, ये मेरी मैया को दे देना और मैं दो चार तीन चार करके मैं आ रहा। नंद बाया का तो चित्त सन्न रह गया हृदय। उन्होंने कहा मैं अपने लड़के को बेच करके जाऊं, ये आभूषण जो दे रहा है और कपड़े इत्यादि दे रहा है, मैया इसकी लेगी तो ये बच्चे को तू बेच करके चला, तुमको उसके प्रति कभी कभी मोह ममता नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ये कैसे संभव होगा जब मैं ये सोचू। किंतु कृष्ण ने कहा कि जब बात हो तो उनकी बात को भी मानना नहीं है। उन्होंने उनके गोदी में रख दिए कपड़े अलंकार सारे और कृष्ण चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इसके बाद में कहा कि पिताजी जल्दी से जाना है घर, नहीं तो वहां पर भी ब्रज उजड़ जाएगा, मेरी गैया सारी मर जाएंगी, बछड़े दूध नहीं पिएंगे, मैया भी मर जाएगी, इसे आपका जाना जरूरी है। अधिक दिन नहीं, कल परसों में मैं जरूर आ जाऊंगा। पिताजी से भी उन्होंने पति किया। इसके बाद में बल्ले गए नंद बाबा, रात में गाड़ी जोड़ी और जो करके सखाओं को साथ लेते जिनको लेकर के आए, रोते रोते ब्रज में गोकुल में वो सुना। बैठे गाड़ी में, गाड़ी चल रही, बैल तो अपना घर पहचानते हैं, बड़े आराम के साथ में खेती के साथ में अपने घर में चल। इधर में ये विचार करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी सीता में, इस जगत में प्रेम ही सर्वोच्च सर्वोच्च भाव है। यह प्रेम ही कृष्ण को, गोपियों को, सखाओं को, सारे जगत को नचाता है। प्रेम के अभाव में ही हम बद हुए हैं। प्रेम होने पर ही मुक्त हो सकते हैं, कृष्ण की सेवा को पा सकते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम के भी तात्पर्य होता है, थोड़ा प्रेम, अधिक प्रेम, अधिक और भी अधिक प्रेम, और भी अधिक प्रेम, सर्वोच्च प्रेम। जगत में जितने प्रकार के प्रेम हैं उनको साधारण रूप से पांच भागों में विभक्त कर दिया गया है। शाम दास्य सत्य वात्सल्य पांच विभाग कर सारे प्रेमों को विचार कर, जिसमें ऐश्वर्य की अत्यंत अधिकता है, यहाँ पर भी भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत ही नहीं समझते, उनको सर्वव्यापी आनंद का भूख प्यास से रहित जन्म